दिन भर 8 अगस्त दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदर। राज्यसभा के लिए गुजरात विधानसभा से चुनाव संपन्न, परिणाम के बारे में अभी भी संशय। शिया वक्फ बोर्ड ने कहा अयोध्या में मस्जिद विवादित स्थल से कुछ दूर बननी चाहिए।
आप मुसलमान नहीं चाहता कि वहाँ पे किसी बहादुरी मस्जिद का निर्माण अब हो पाएगा, या वो जबरदस्ती करे या खून खराबा मस्जिद के लिए करे, तो लिहाजा मस्जिद वहाँ बन जाए जहाँ पे मुसलमान और नमाज पढ़ने जाए।
पार्टीशन सीरीज के अंतर्गत बताएंगे मुसलमानों के एक ऐसे धार्मिक स्थल के बारे में जिसकी देखभाल सिख करते हैं।
47 में देश दो भागों में मतलब बट गया, तब से बहुत ही श्रद्धा और भावना से इस जगह की सेवा कर।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। देश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है और इस बीच सभी की निगाहें हैं गुजरात की 3 सीटों पर, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल उम्मीदवार हैं। गुजरात में वोटिंग खत्म हो चुकी है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि वो 2 विधायकों के मतों को रद्द करें क्योंकि उन्होंने अपना वोट दिखा कर दिया था। इराक की एक कोर्ट ने कथित चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट के द्वारा किए गए नरसंहार में शामिल होने के आरोप में 27 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। कैंप स्पाइकर नरसंहार के नाम से जाने जाने वाले इस नरसंहार में करीब 1700 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से अधिकतर सेना के जवान थे। साल 2014 में तिकरित शहर पर कब्जा करने के बाद लड़ाकों ने जवानों की तस्वीरें जारी की थी, जिनमें वो मारे जाने से ठीक पहले एक कतार में खड़े किए जाते दिख रहे थे। इस मामले में पहले ही 30 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। दक्षिण अफ्रीका की संसद में राष्ट्रपति जेकब जुमा के खिलाफ अविश्वास मत पर बहस चल रही है, जिसके बाद पहली बार संसद में इस पर सीक्रेट मतदान कराया जाएगा। बहस की शुरुआत करते हुए विपक्षी डेमोक्रेटिक गठबंधन के नेता मूसी माइमाने ने सांसदों से अपील की है कि वो राजनीति से हटकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट करें। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति जुमा ने वित्त मंत्री को निलंबित कर दिया था, जिसके विरोध में मूसी माइमाने की पार्टी ने अविश्वास मत का प्रस्ताव दिया था। सत्ताधारी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि उनके सांसद राष्ट्रपति जुमा के पक्ष में मतदान करेंगे। विपक्षी डेमोक्रेटिक नेता गठबंधन के नेता मूसी माइमाने का कहना है,
द चॉइस दैट इज बिफोर अस इज अ सिंपल वन, ईदर
हमारे सामने 2 रास्ते हैं, या तो हम एक परिवार को अलग थलग करने की हमारे राष्ट्रपति के फैसले का समर्थन करें या हमसे सब कुछ ले जाने दें, या फिर हम अपना देश उनसे वापस लें। हमारे सामने कोई आसान चुनाव नहीं है, ये पार्टी की राजनीति भी नहीं है। हमें ये भी नहीं चुनना कि किसने अविश्वास मत पेश किया और किसने नहीं, बल्कि हमें सही और गलत, अच्छे और बुरे के बीच में से चुनाव करना है। हमें वो करना है जो हमारे देश के लिए सबसे बेहतर है। ये थे विपक्षी डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता मूसी माइमाने के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस के किसान और वामपंथी एक्टिविस्ट को इटली से आने वाले प्रवासियों को देश के भीतर गैरकानूनी तरीके से घुसाने के आरोप में 4 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। सेड्रिक हेरू नाम के किसान पर पहले जुर्माना लगाया गया था, लेकिन अपील कोर्ट ने मामले में सजा बढ़ाते हुए उन्हें 4 महीने की कैद सुनाई है। हेरू ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से अपील की है कि वो प्रवासियों के लिए कुछ करें। मैं जनाब मैक्रों से अपील करता हूं कि ये मामला गंभीर है, वो कोई पक्ष तो लें। वो हमें किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं? हमने बीते दशकों में जो लड़ाइयां लड़ी हैं उनका क्या? मानवाधिकारों का क्या होगा? बच्चों के अधिकारों के बारे में क्या? ये सब करने का क्या मतलब है? आज की तारीख में फ्रांस आखिर किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? हम दूसरों को अपने बारे में क्या छवि देना चाहते हैं? ये थे फ्रांस के किसान सेड्रिक हेरू के सवाल। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मोरक्को और स्पेन की सीमा पर विवाद एक बार फिर तब बढ़ गया जब जिब्राल्टर खाड़ी में मौजूद स्पेन के शहर सियूटा और मोरक्को के बीच बनी सीमा को हजारों लोगों ने तोड़ने की कोशिश की। बीते कल भी करीब 200 लोगों ने सीमा को जबरन तोड़ दिया था। मिल रही खबरों के अनुसार अफ्रीका के सहारा इलाके से आने वाले करीब 1000 प्रवासियों ने सीमा पर बने बाड़े को तोड़कर सियूटा में घुसने की कोशिश की। उन्हें सीमा सुरक्षा बलों ने रोक दिया। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। गुजरात राज्यसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है। इस चुनाव में सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के चुनाव पर सबकी नजरें हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस के ही कुछ विधायक भीतरघात कर पटेल का खेल बिगाड़ सकते हैं। कांग्रेस ने दो विधायकों के वोट रद्द करने की मांग चुनाव आयोग से की है। इस समय हमारे साथ स्टूडियोज में हैं बीबीसी गुजराती सेवा के प्रमुख अंकुर जैन। अंकुर, बताइए अहमदाबाद से क्या खबरें मिल रही हैं?
रेहान जी, ये राज्यसभा चुनावों की के इतिहास में सबसे पहला चुनाव है जो इतना रोचक बना हुआ है कि आज शाम इलेक्शन, आज जब वोटिंग कंप्लीट हो गई है, उसके बाद भी इस स्थिति पे अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है कि अब ये चुनाव किसके पक्ष, कौन जीता है ये चुनाव। ये है कि कांग्रेस इलेक्शन कमीशन के पास गई है, पहले सबसे पहले राज्य स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास गई थी कि उनके दो विधायकों ने चुनाव के वक्त, वोटिंग के वक्त अपने मत जो हैं वो बीजेपी को दिखा दिए और इस वजह से उनको उनके मतों को बर्खास्त कर देना चाहिए, जिस एप्लीकेशन को स्टेट इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दी। उसके बाद, उस रिजेक्शन के बाद अब ये सेंट्रल इलेक्शन कमीशन में गए हैं जहां कांग्रेस के आला नेता और बीजेपी के कई सेंट्रल मिनिस्टर्स भी इस वक्त पहुंचने की बात आ रही है और इस बात पे निर्णय इलेक्शन कमीशन अभी ले रहा है कि क्या इन मतों को बर्खास्त करना चाहिए। अगर ये बर्खास्त नहीं होते तो स्थिति अलग होती है और क्या बर्खास्त हो जाते हैं तब स्थिति अलग होती है। तो अब जो वोटिंग है वो उसी के बाद शुरू होगी कि जब इलेक्शन कमीशन अपना निर्णय इस बात पे देगा।
अच्छा, ये बताइए, ये जो जनता दल के दो विधायक हैं और एनसीपी के जो विधायक हैं, इनके वोटिंग के बारे में परस्पर विरोधी बयान आ रहे हैं, इनके बारे में क्या खबर है?
बिल्कुल, जो जनता दल यूनाइटेड के जो एक विधायक हैं गुजरात में, छोटू भाई वसावा, और वहीं एनसीपी के दो विधायक हैं जिसमें एनसीपी के एक स्टेट प्रेसिडेंट है बॉस्की पटेल। अब ये बात आ रही है कि जेडीयू के विधायक ने ऑन रिकॉर्ड आके पत्रकारों से ये कहा है कि उन्होंने अहमद पटेल के पक्ष में वोट किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो इस बात पर रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि जो छोटू बसावा का वोट है वो काफ़ी निर्णायक वोट है, वो एक वोट डिसाइड कर सकता है कि अहमद पटेल राज्यसभा जाएंगे या बलवंत सिंह राजपूत। और वहीं एनसीपी में भी दो अलग अलग ओपिनियन बाहर आ रहे हैं, जिसमें से जो उनके स्टेट प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि उन्होंने अहमद पटेल के पक्ष में वोट किया है और जो दूसरे नेता हैं पोरबंदर से वो कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी के फेवर में वोट किया। तो इस बात पे अभी भी कुछ क्लियर पिक्चर नहीं है, मिस्ट्री बनी हुई है कि किसके पक्ष में अब ये वोट जाते दिखेंगे, ये रिजल्ट आने के बाद ही कहा जाएगा।
कहने का मतलब ये कि स्थिति बहुत गड़मड है और अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। चुनाव आयोग से कुछ संकेत मिल रहे हैं, कब तक ये फैसला आएगा?
ये फैसला चुनाव आयोग कुछ ही क्षणों में आ सकता है क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी इस पे एक ऑर्डर जारी करके ये कहा है कि इस तरह के कोई भी रिजेक्शन वैलिड नहीं है, और तो शायद इलेक्शन कमीशन स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को ही एज इट इज़ रखे, उसमें कोई बदलाव ना करे, तो जो भी है फैसला कुछ ही मिनटों में आ सकता है।
बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जैन आपका, और अगर इस बारे में कोई सूचना होगी तो जल्दी ही हम तुरंत आपको बताएंगे कि गुजरात में क्या हुआ। और अब लेते हैं दूसरा विषय। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में शिया वक्फ बोर्ड की कथित दावेदारी और मसले के हल के लिए एक सुझाव पेश करने से मामले में नया मोड़ आ गया है। बोर्ड का कहना है कि मस्जिद को विवादित जगह से कुछ दूर बनाया जाए ताकि इस विवाद का हल निकल सके। हालांकि शिया वक्फ बोर्ड के इस फैसले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी दोनों ने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया है कि इस मामले में उनकी कोई कानूनी अहमियत नहीं है। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद अभी तक हिंदुओं और मुसलमानों के बीच ही था, लेकिन इसमें शिया वक्फ बोर्ड के हस्तक्षेप के बाद अब विवाद मुसलमानों के दो समुदायों के बीच भी शुरू हो गया है। शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में उन्हें पार्टी बनाने की मांग की है और साथ ही विवाद के हल के लिए एक सुझाव भी दिया है। लखनऊ में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी कहते हैं,
हमने पिटीशन फाइल की, हमने अपना जवाब दाखिल किया है उसमें, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले से पार्टी थे, ने ये बात कही है कि एक कमेटी का गठन होना चाहिए और जो सारी पार्टी को लेकर बैठ कर आपस में बात करें और बातचीत से इस मामले का हल निकले। और शिया वक्फ बोर्ड का व्यू ये है कि मंदिर और मस्जिद एक साथ नहीं होनी चाहिए, हिंदू डोमिनेटेड एरियाज जो है वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए और जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वहाँ पे मस्जिद होनी चाहिए।
वसीम रिजवी ये भी दावा करते हैं कि विवादित स्थल पर मंदिर बन चुका है, बस उसे आकार देने भर की जरूरत है। उनके मुताबिक ऐसी स्थिति में हिंदुओं और मुसलमानों को सुलह का ही रास्ता अपनाना चाहिए।
कोई देखिए जिनकी दुकानें चल रही उनको छोड़ के आम मुसलमान नहीं चाहता कि वहां पे किसी बेहतरी मस्जिद का निर्माण अब हो पाएगा या वो जबरदस्ती करे या खून खराबा मस्जिद के लिए करे। तो लिहाजा मस्जिद बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए, मस्जिद वहां बन जाए जहां पे मुसलमान हो और नमाज पढ़ने जाए।
अयोध्या विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 11 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में होनी है, जहां 3 सदस्यीय खंडपीठ जमीन के मालिकाना हक को लेकर चल रहे विवाद का निर्णय करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने साल 2010 में अपनी व्यवस्था में इस जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 हिस्सों में बराबर बराबर बांटने का निर्देश दिया था। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसी आधार पर शिया वक्फ बोर्ड के इस दावे और उनकी पेशकश पर सवाल उठाए हैं। बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद,
बिल्कुल सी बात है कि शिया वक्फ बोर्ड से सही मानों में इस मामले से कोई मतलब ही नहीं है। उसमें 3 मुख्य पक्ष हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड है, निर्मोही अखाड़ा है और भगवान रामलला विराजमान है और बाकी कुछ अयोध्या के लोकल लोग हैं। तो जो भी मुकदमा है ये उन्हीं के बीच में है। एक मुकदमा किसी ने दायर किया था, उसमें शिया वक्फ बोर्ड भी पार्टी बना दिया था, लेकिन इसमें पहले एक विवाद चला था सन 1945 में
जी,
ये शिया मस्जिद है या सुन्नी मस्जिद है। तो उसका 46 में डिसीजन हो गया था कि ये सुन्नी मस्जिद है। तो 46 में जो चीज डिसाइड हो चुकी है तो आप 71 साल बाद उसको जो है आप जुडिशियल ऑर्डर को नजरअंदाज करते हुए फिर अपना दावा एक पेश करके और बयान दे देंगे तो ये तो होगा बयानबाजी है, मतलब एक हिसाब से और क्या मैं कहूँ।
लेकिन शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी कहते हैं कि मस्जिद दरअसल शिया लोगों की ही थी। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड का ये भी कहना है कि कोई भी पहल बिना सरकार के नहीं हो सकती। इस सवाल पर कि क्या शिया वक्फ बोर्ड के इस कदम से ये विवाद हिंदुओं और मुसलमानों की बजाय मुसलमानों के दो समुदायों के बीच ज्यादा नहीं हो जाएगा, जफर अहमद कहते हैं।
हाँ, वो उनकी इस बात से तो यही लग रहा है मुझे, मैं क्या बता सकता हूँ इस पर, क्योंकि कोई ऐसे कंसल्टेशन हम लोगों के साथ तो हुआ नहीं कि वो भी इसमें आ जाए और ज्वाइन करने आके उसको।
इस बीच इस मामले में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने भी सुन्नी वक्फ बोर्ड का समर्थन किया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच 11 अगस्त से ये जानने की कोशिश करेगी कि अयोध्या के इस विवादित स्थल का जो बंटवारा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया था वो ठीक है या नहीं। लेकिन शिया वक्फ बोर्ड के दावे और उसकी पेशकश को कितनी तवज्जो मिलती है ये देखने वाली बात होगी। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,510, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने अपनी ही पार्टी के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने PTI को दिए इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीर संकट से गुजर रही है। पार्टी 1996 से 2004 तक चुनावी संकट से गुजरी थी जब वो सत्ता के बाहर थी, और 1977 में भी चुनावी संकट में फंस गई थी जब वो आपातकाल के बाद चुनाव हार गई थी। लेकिन जयराम रमेश के अनुसार अब कांग्रेस का संकट पिछले संकटों की तुलना में काफी अलग है। मैंने वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह से संपर्क किया और पूछा कि जयराम रमेश ने जो कहा है कि सल्तनत चली गई लेकिन कांग्रेसी नेता उसी तरह से बर्ताव कर रहे हों जैसे वो अभी भी सुल्तान हो, इसको आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए, जयराम रमेश की टिप्पणी को एक साधारण ढंग से नहीं देखा जा सकता है। उसकी वजह ये है कि जयराम रमेश को पार्टी में इंटेलेक्चुअल होने का एक एहसास है, और दूसरी चीज ये है कि इंदिरा गांधी पे उन्होंने काफी काम भी किया है, उनकी अभी हाल में ही उन्होंने एक बुक भी लिखी है। कुल मिला के अगर आप देखें तो कांग्रेस की हिस्ट्री से उनकी अच्छी जानकारी है, और कांग्रेस की हिस्ट्री में जो उतार चढ़ाव हुए हैं उसको देखते हुए उनका ये टिप्पणी को वाकई में पार्टी के अंदर इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
वो कहते हैं कि पार्टी को नए सिरे से सोचने, करने और कम्युनिकेट करने की जरूरत है, इससे क्या तात्पर्य आप लगाते हैं?
देखिए, दिक्कत यही हो रही है कि पार्टी क्या वाकई में इंट्रोस्पेक्शन के मोड में है या पार्टी इस मोड में है कि उसको राहुल गांधी को लाना है, ये कहीं उसकी स्ट्रेटजी तो नहीं है। अगर ये सिर्फ उसकी स्ट्रेटजी है तब तो हमें ये लगेगा कि ये शायद ईमानदार एक असेसमेंट नहीं है, लेकिन अगर वाकई में इंट्रोस्पेक्शन की बात है और अपोजिशन की जो हालत है उसको देखते हुए, तब तो ये जरूर लगेगा कि अपोजिशन को रिबूट होने की जरूरत है और उसमें कांग्रेस चूंकि एक मुख्य दल है तो उसके लिए एक एग्जिस्टेंशियल, जो उन्होंने वर्ड किया कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, वो हमें साफ दिख रही है।
लेकिन अजय, आप मानेंगे कि कांग्रेस में दूसरी पंक्ति का नेतृत्व तो है ही नहीं, वर्तमान नेतृत्व का कोई विकल्प देखते हैं आप?
नहीं, दूसरी पंक्ति तो छोड़िए, पहली पंक्ति का ही नेतृत्व तो नहीं है। पहली पंक्ति में ही कोई नहीं है जो कि आपको एक अपोजिशन की वॉइस लेके चल सके, जो बता सके कि अपोजिशन किस उसमें जाएगा डायरेक्शन में, सरकार की गलतियों को लेके उसको एक जो सामने इश्यूज रखे जाते हैं उसको लेके आ सके। ऐसा तो कोई मुख्य नेता उनका दिखाई नहीं दे रहा है।
क्या इस क्राइसिस से कैसे उबारा जा सकता है, क्या है इसका इलाज? राहुल गांधी का विकल्प ढूंढा जाए या कुछ और?
देखिए, एक तो इनको सोचना पड़ेगा कि आखिर अभी तक ये एक जो डोमिनेंस वाली पोजीशन में थे वो इनके पास से निकल चुका है, और ये आज से नहीं निकला है, बहुत दिन से निकला है, लेकिन इनको एहसास ये हो ही नहीं रहा है। बीजेपी आज के दिन में जो कांग्रेस की 60 वाली स्थिति थी, जिसमें कि आपको राइटिस्ट से लेके और लेफ्ट स्ट्रीम या सोशलिस्ट स्ट्रीम के लोग होते थे, वो वाली स्थिति आ गई है। तो जब तक ये रियलाइजेशन इनको नहीं होगा कि जो बीजेपी कांग्रेस की 60 में जो स्थिति थी, बीजेपी की आज वो स्थिति है और हम लोग एक अपोजिशन है जिसको एक साथ होना होगा, जब तक ये रियलाइजेशन डीपली इनको नहीं होता है, तब तक ये कोई भी स्ट्रेटजी इनके लिए ठीक नहीं होगी।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह। ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। झारखंड की राजधानी दुमका में एक युवती की नग्न कर पिटाई और उसके निर्वस्त्र परेड का वीडियो वायरल हो जाने के बाद सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इस बीच मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दुमका प्रशासन से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
हम तो जी मतलब हम नहीं है, मतलब हम तो मर गए, पूरा पूरा बेइज्जत, मतलब हम वो फोटो तो फेरा फेरा हुए ना, तो अभी तो हम बोल रहे कि मरेंगे तो हम मर रहे क्या, मतलब हम के मरेंगे।
ये आवाज दुमका के प्रतिष्ठित एसपी कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रहे उस छात्रा की है जिसका नग्न वीडियो वायरल हुआ है। उसकी गुनाहगार कोई और नहीं बल्कि उसी के कॉलेज की दूसरी छात्राएं हैं। दरअसल आदिवासी बालिका छात्रावास में रहने वाली एक लड़की का मोबाइल पिछले दिनों चोरी हो गया। इस बीच कुछ छात्राओं ने देखा कि उनकी सहपाठी सेलिना वैसा ही एक मोबाइल यूज कर रही है, तो लड़कियों को उसके चोर होने का शक हुआ। इसके बाद छात्राओं का एक समूह सेलिना को बंधक बनाकर हॉस्टल ले आया और फिर नग्न कर उसकी पिटाई की गई। इस घटना की वीडियो क्लिप भी बनाई गई। इस मामले की पीड़िता सेलिना ने बीबीसी को बताया,
सर मोबाइल ले लिए, मतलब हम स्टैंड में मोबाइल से बात कर रहे थे तो हमको लेके गए स्टैंड, तो वहीं पे एक दिन एक रात
सेलिना को नग्न करने और उसकी पिटाई के दौरान छात्राओं ने हॉस्टल में महापंचायत भी बुलाई। इसमें सेलिना पर 18,600 रुपये का जुर्माना लगाया गया। सेलिना के पिता ने इतनी बड़ी रकम की अदायगी के लिए 25 अगस्त तक की मोहलत मांगी और कहा कि तब तक उनकी बेटी का वीडियो किसी को नहीं दिखाया जाए। इस बीच किसी लड़की ने वह वीडियो अपने किसी दोस्त को भेजा और देखते देखते यह वीडियो वायरल हो गया। सेलिना के पिता मनिंद्र इस घटना से आहत हैं और कहते हैं कि अब उनकी बेटी से कौन शादी करेगा।
मोबाइल तो एक किया तो पैसा दिया जाए तो हम भी हाँ ई कर दिया, बोला कि इतना पैसा लाए, 600 मिला कि कितना दिन का जो चोरी उसको घर में गिरा दिया 100।
इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उक्त हॉस्टल की वार्डन और एक छात्रा को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। दुमका के एसपी मयूर पटेल ने बीबीसी से कहा कि हम जल्दी ही इस मामले का खुलासा कर देंगे।
पूरा मामला में पुलिस को जब से सूचना मिली है लगातार इसमें जांच कर रही है पुलिस, और जो पीड़िता है उनके बयान दर्ज किया है पुलिस के द्वारा किया गया है, और उसी के आधार पर लगातार इस पर इंक्वायरी और जाँच चल रही है।
इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दूसरे विपक्षी नेताओं ने इस घटना के लिए सरकारी तंत्र को जिम्मेवार ठहराया है। हेमंत सोरेन ने कहा,
छात्राओं को किस तरीके के तालीम दे रहे हैं, किस तरीके का उनका आचरण व्यवहार में बदलाव हो रहा है, इस पर कहीं ना कहीं सरकार के व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता।
इधर मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देश के बाद दुमका प्रशासन ने महिला एडीएम के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित की है जो कल अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। यूनिवर्सिटी ने भी प्रोवीसी के नेतृत्व में एक अलग जांच कमेटी बनाई है। इस बीच पुलिस के साइबर सेल ने लोगों से उस वीडियो को डिलीट करने की अपील की है ताकि इसे और सर्कुलेट होने से बचाया जा सके। रवि प्रकाश, BBC रांची।
भारतीय कश्मीर में एक कश्मीरी पंडित स्कूल चलाते हैं जहां करीब 1100 छात्र पढ़ते हैं, जिनमें से लगभग सभी छात्र मुसलमान हैं। बस 15 छात्रों को छोड़कर जो पंडित हैं। यहां इन पंडित और मुसलमान छात्रों में कितनी गहरी दोस्ती है और इस कश्मीरी पंडित ने स्कूल को चलाने में आज तक कितना संघर्ष किया है, जानिए माजिद जहांगीर की इस रिपोर्ट में।
संजय वर्मा ने वर्ष 2004 में जब कश्मीर के गांधरबल में विजय मेमोरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से स्कूल खोला था तो उन्होंने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि यहाँ इतनी संख्या में मुसलमान बच्चे शिक्षा हासिल करने आएंगे। संजय वर्मा एक कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने दूसरे कश्मीरी पंडितों की तरह कश्मीर से विस्थापन नहीं किया। संजय वर्मा के इस स्कूल में तकरीबन 50 शिक्षक हैं जिनमें गैर मुस्लिम शिक्षकों की तादाद कुल 6 है। संजय वर्मा ये भी कहते हैं कि कश्मीर में जब वर्ष 1990 में हालात खराब होने लगे तो उनकी माँ यहाँ के मुसलमान बच्चों को मुफ्त में घर में पढ़ाती थी। कश्मीर में स्कूल खोलने पर संजय वर्मा कहते हैं,
मेरी मदर के जाने के बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं ये ज़मीन यहाँ की बेचूं और बाहर कहीं सेटल हो जाऊं। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मेरी माँ यहाँ ही रह जाएगी। तो अपनी माँ के ख्वाब जो था, उनका सपना था कि एजुकेशन चलती रहनी चाहिए यहाँ पे, तो उनके सपने को पूरा करने के लिए मैंने स्कूल खोला।
संजय वर्मा कश्मीर न छोड़ने पर कहते हैं,
यहाँ जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, पड़ोसी लोग जो हैं, सारे मुस्लिम्स हैं, कि एक घर है हमारा हिंदुओं का, बाकी सभी पड़ोस में मुस्लिम्स हैं। और वो सभी ने इतना ख्याल रखा हमारा कि हमको ये ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि हमको यहाँ से जाने के बारे में सोचना पड़े।
वर्ष 1990 में कश्मीर घाटी में जब हथियारबंद आंदोलन शुरू हुआ तो कश्मीर में रहने वाले लाखों कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर चले गए और भारत के मुख्तलिफ शहरों में बसने लगे। संजय वर्मा कहते हैं कि शिक्षा के मैदान में न कोई हिंदू है और न कोई मुसलमान और न ही कोई सिख और न ईसाई। यहाँ पढ़ने वाले पंडित शिक्षकों के गहरे दोस्त मुसलमान हैं जो एक दूसरे के साथ हर चीज का साझा करते हैं। 10वीं क्लास में शिक्षा हासिल कर रही इशा रैना की यहाँ स्कूल की बेहतरीन दोस्त जो है वो सादिया हैं। दोनों ही डॉक्टर बनना चाहती हैं। दोनों की दोस्ती स्कूल में बहुत साल पहले हुई थी। सादिया कहती हैं,
हमारी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू मुस्लिम। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, उनसे मेरी ये बेस्ट फ्रेंड है यहाँ पे।
इशा के लिए भी ये दोस्ती बहुत कीमती है। इसी तरह 8वीं क्लास के छात्र राहुल और अयान की दोस्ती भी बहुत गहरी है। दोनों की दोस्ती बचपन में हुई थी। राहुल कहते हैं,
सर जब से मैं पढ़ रहा था यहाँ तब से मेरा दोस्त था। मेरी कोई प्रॉब्लम वॉब्लम होती है तो ये मेरा हल करता है, दोनों हम एक ही साथ, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है।
अयान उस वक्त को याद करते हैं जब उनके पास खाना नहीं होता था और स्कूल में उन्हें राहुल खाना खिलाते थे। अयान ने कहा,
जब मैं पहले आया तो राहुल ही मेरे दुख बांटता था। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी तो अगर हम खाना भी हम मुझे कभी नहीं होता था तो राहुल मुझे खाना हम शेयर करते थे, सालन भी हम शेयर करते थे। इसलिए आगे जाकर हमारा बहुत अच्छा सफ़र रहा, ये मेरा दोस्त अच्छा बन गया।
संजय वर्मा इस सफ़र पर तो अकेले चले थे लेकिन जहां वक्त ने उनका सफ़र आसान किया वही कश्मीर की नई पंडित और मुसलमान पीढ़ी को भी संजय वर्मा ने नज़दीक आने का मौका दिया। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक ऐसी जगह है जहां मुसलमानों के धार्मिक स्थानों की देखभाल गांवों में रहने वाले सिख लोग करते हैं। अटारी के पास सूफी संतों हजरत खिस्बत अली शाह और हजरत इस्मत अली शाह की दरगाहों पर अधिकतर दर्शनार्थी भी सिख हैं और उनकी देखभाल और प्रबंधन करने वाले भी सिख हैं। पार्टीशन सीरीज में सुनिए सलमान रावी की विशेष रिपोर्ट।
दूर दूर तक ढोल नगाड़ों की धुन, रास्ते में लोगों का हुजूम भी है जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर अटारी से सूफी संतों हजरत खिस्बत अली शाह और حضرت عظمت علی شاہ کی درگاہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ درگاہ کے مہانے پر ہرے جھنڈے ہیں جن پر چاند اور تارے بنے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے ہاتھوں میں چادریں بھی ہیں جن پر کلمہ یا قرآن کی آیتیں لکھی ہیں۔ درگاہ پر سجادہ نشین بھی ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، یہ سبھی سکھ ہیں۔ درگاہ پر آنے والے بھی اور اس کی دیکھ بھال کرنے والے بھی
مسلمان کی ہے،
لیکن آپ لوگ آتے ہیں یہاں کوئی تو مسلمان؟
لوگ اپن تو جے ہیں،
دیکھ بھال کون کرتا ہے؟
اپن ہیں، ہمیں دیکھ بھال سیوا دار یہ سارے سیوا کرتے ہیں، پائے تو سیوا کری جا، یہ آپ کی شردہ ہے، یعنی آپ کی شردہ۔
جڑی سیوا کرتا کوئی مسلمان نہیں ہوتا، جو کوئی سیوا کرے وہ مسلمان نہیں ہوتا،
سب سکھ ہی، سب گرو دے سکھ۔
ہر سپتاہ بدھوار کو یہاں میلہ لگتا ہے جس میں قوالیاں، پارمپرک لوک گیت، صوفی گیت اور ساموہک لنگر کا آیوجن کیا جاتا ہے۔ اس درگاہ کا اتہاس بہت پرانا ہے۔ ستھانی لوگ بتاتے ہیں کہ یہ درگاہ اس سمے کی ہے جب یہاں مغل بادشاہ جہانگیر کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ راجہ تال کے بزرگ سبا سنگھ کہتے ہیں کہ پشت در پشت سکھوں کی آستھا حضرت خزمت علی شاہ اور حضرت عظمت علی شاہ کی درگاہ سے جڑی ہوئی ہے۔ درگاہ پر ستھانی لوگوں کی آستھا کا یہ حال ہے کہ اس کے سارے رسم و رواج ویسے ہی ہیں جیسے مسلمان کیا کرتے تھے، چاہے سالانہ عرس کا آیوجن ہو یا پھر درگاہ کے اندر دوسرے بزرگوں کی قبروں کی دیکھ بھال۔ درگاہ کی سنچالن سمیتی کے ادھیکش وراثت سنگھ بتاتے ہیں کہ ہر سال سمیتی کے نئے سدسیہ چنے جاتے ہیں۔
1947 میں دیش دو بھاگوں میں مطلب بٹ گیا، اس کے بعد یہ جو رقبہ ہے، جو جگہ ہے جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، تو یہ انڈین لوگوں کے پاس آ گئی۔ تب سے مطلب نیئر اباؤٹ 47 سے سکھ لوگ ہی اس کی بہت ہی شردا اور بھاونا سے اس جگہ کی سیوا کر رہے ہیں۔ ہاں ایسے تھا کہ جب ادھر وائر نہیں لگی تھی تو سبھی ایک ہی ساتھ تھا، کوئی مطلب بھید بھاؤ ہندو مسلم سکھ عیسائی نہیں تھے۔ تو پاکستان تو 1947 کے بعد بنا، اس سے پہلے سب لوگ ایک تھے، ادھر بھی مسلمان رہا کرتے تھے، تو تب سب لوگ ایک ساتھ مل کے اس جگہ پہ چادر چڑھایا کرتے تھے۔
آج اٹاری کے اس علاقے میں مسلمانوں کی کوئی آبادی نہیں ہے، مگر صوفی سنتوں کی یہ درگاہ ستھانیہ سکھ سمودائے کی آستھا کا ایک بہت بڑا کیندر بن چکا ہے۔ سلمان راوی، BBC، اٹاری۔
اور سبھا کے انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر۔
BBC سماچار۔ گجرات کی 3 راجیہ سبھا سیٹوں کے معاملے میں ابھی تک چناؤ آیوگ کا کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے۔ کانگریس نے چناؤ آیوگ سے اپیل کی تھی کہ وہ 2 ودھایکوں کے متوں کو رد کرے۔ دکشن افریقہ کی سنسد میں راشٹرپتی جیکب زوما کے خلاف اوشواس مت پر بحث چل رہی ہے، جس کے بعد پہلی بار سنسد میں اس پر سیکرٹ متدان کرایا جائے گا۔ شری لنکا میں ادھیکاریوں نے پریکشاؤں کے دوران مہیلا چھاتروں کے پورے منہ ڈھکنے یعنی نقاب پہننے پر پابندی لگا دی ہے۔ شری لنکا کے ڈپٹی شکشا منتری ویلو سامی رادھا کرشنن نے BBC کو بتایا کہ انہیں شکایتیں مل رہی تھیں کہ پریکشارتھی اپنے کپڑوں میں الیکٹرانک گیجٹ لگا کر پریکشاؤں میں نقل کر رہے ہیں۔ امریکی ٹیلی ویژن نیٹورک HBO کے کمپیوٹر سسٹم کو ہیک کرنے والوں نے ہیک کر چرائی کی گئی فائلوں کو آن لائن پوسٹ کر دی ہیں۔ موراکو اور اسپین کی سیما پر وواد ایک بار پھر تب بڑھ گیا جب جبرالٹر کھاڑی میں موجود اسپین کے شہر سیوٹا اور موراکو کے بیچ بنی سیما کو ہزاروں لوگوں نے توڑنے کی کوشش کی۔ BBC سماچار۔
دن بھر کو یہیں ویرام دیتے ہیں۔ اسٹوڈیو سنبھال رہے تھے شاکر عالم، ریحان فضل کو سبھی ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ نمسکار۔